ब्रह्मा कुमारी सेश्वरी विश्वविद्यालय में आप 1989 से ही समर्पित हुए हैं और आप चंडीगढ़ में वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आपने बहुत सारे लेक्चर्स इंडिया और नेपाल में भी आपने कंडक्ट किया है, जैसे पीस एंड हार्मनी, पॉजिटिव लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, रिलेशन मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सेलेंस इन परफॉर्मेंस, हैप्पी फैमिली लाइफ। इस तरह के कई टॉपिक्स पर आपने इंडिया और नेपाल में सेवाएं दी हैं और उसके साथ साथ कई अवेयरनेस कैंपेन्स भी आपने किया है, सद्भावना युवा साइकिल यात्रा, बिजनेस टू सर्व द सोसाइटी, एनवायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन, इरैडिकेटिंग अल्कोहल एंड ड्रग्स एडिक्शन रैली, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन रैली, एजुकेशन फॉर पर्पसफुल लाइफ, ग्राम विकास यात्रा। इस तरह के अनेकों नेशनल अवेयरनेस कैंपेन्स भी आपने कंडक्ट किए हैं। आपने स्कूल्स और कॉलेजेस में भी चंडीगढ़ में बच्चों के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेस भी आपने कंडक्ट किए हैं। तो बहुत ही अच्छी वक्ता के रूप में ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन में जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया के ब्रांचेस है उसमें बहुत सुंदर तरीके से राजयोग शिविर भी आप कंडक्ट करते हैं। तो आज हमारे बीच में दीदी जी पहुंचे हैं। दीदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति।
ओम शांति। पहले हम 5 मिनट तक एकदम शांत होकर बिल्कुल अपने समीप आकर बैठेंगे, इतना समीप के हमें अपने चारों तरफ ऑरा यानी प्रभाये और हमें सिर्फ अपने बहुत नजदीक की ही आवाज यानी साइलेंस वो फील हो, क्योंकि बिल्कुल आपके नजदीक तो सिर्फ आपके सांस की ही आवाज होती है और सारा दिन दुनिया की आवाजें सुनते हुए हम अपने सांस की आवाज भी नहीं सुनते हैं, लेकिन वो बहुत साइलेंस का एक्सपीरियंस करते हुए भी फील ये करना है कि आपके मस्तक में लाइट ही लाइट फैल गई है। तो एकदम शांत हो जाएंगे, दोनों पांव जमीन पर लगाएंगे, सीधे बैठेंगे या चौकड़ी लगाएंगे या जमीन पर पांव लगाएंगे, दोनों। महसूस कीजिए, मस्तक में चमकता हुआ सितारा, बहुत शांत है, शक्तियों से भरपूर है, आपके मस्तक में चमकती हुई लाइट आपके फेस पर और धीरे धीरे सारे शरीर में फैल रही है, आपके चेहरे पर नेचुरल बच्चों जैसी मासूम मुस्कान है, चमकता हुआ चेहरा, फील करेंगे जितना आप शक्तियों से भरपूर हैं, मस्तक से आपके शरीर से निकलती हुई लाइट आपके चारों तरफ फैल रही है। जहां आप बैठे हैं आपके चारों तरफ एक लाइट का घेरा बन गया है। प्रकाश के आभा मंडल में आप बैठे हैं। अपने चारों तरफ लाइट ही लाइट महसूस करें। ये भगवान की छत्र छाया है, इसमें आप सुरक्षित हैं, शांत हैं, मस्तिष्क से निकलने वाली एनर्जी सारे शरीर में पांव के अंगूठे तक फैल रही है। फील द वाइब्रेशंस ऑफ साइलेंस सराउंडिंग यू। फील द पॉजिटिव लाइट। मेकिंग यू हेल्दी and happy। You are most contented soul in the world। अपने आप को ये positive thought देंगे, मैं सबसे संतुष्ट आत्मा हूँ, बहुत संतुष्ट आत्मा हूँ। आपकी शांति और संतुष्टि आपकी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा बनाती है। आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है। सारे दिन में हर कर्म इसी अच्छी स्थिति में मुस्कुराते हुए चेहरे से आप कर सकते हैं। एकदम शांत पीसफुल अपने मन ही मन स्वयं को कह दें, आई एम पीसफुल सोल। मैं शांत आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। Nothing can disturb me, no one can disturb me, I am whole। मैं शांति के सागर की संतान हूँ। सभी एक साथ प्यार से ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। शांति शांति शांति। एक बार और करेंगे, शांति शांति शांति। ओम शांति। जो दो दिन से जो भी ज्ञान आपने सुना, उसमें एक खास बात, ये तो आपको बिल्कुल पक्का हो गया होगा कि आप शरीर के माध्यम से एक्टिंग करने वाली क्या हैं? क्या हैं आप? आत्मा है। शरीर छूट जाएगा, रह जाएगा, और शरीर के खत्म होने के बाद, पड़े रहने के बाद आत्मा ही निकल कर जाती है। तो ऐसा होता है, यात्रा आत्मा की है। शरीर से जब यात्राएं करते हैं तो हमें बहुत सी सुविधाएं चाहिए होती है, है ना। आप आए हैं ट्रेन में रिजर्वेशन, कोई बाय रोड आए हैं, कोई अपनी गाड़ी में, कोई बस में, कोई बाय एयर भी आए होंगे। तो इस तरह से शरीर को लेकर जाने के लिए, शरीर को मोबिलाइज करने के लिए हमें बहुत सी सुविधाएं जरूरत है, धन की जरूरत है और बहुत सारे साधनों की जरूरत है। फिर शरीर को रखने के लिए कितने सारे साधन, घर मकान, ये सब चाहिए, तो ये भी चाहिए। आत्मा की यात्रा के लिए इन सब साधनों की आवश्यकता नहीं होती, वो सब नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम आज जो खास मुश्किल बातें जो महसूस हुआ करती थी कि मेडिटेशन ऐसा सब्जेक्ट है जी, हमारा मन नहीं टिकता, हमारा मन नहीं लगता इसमें, तो इसको एक मुश्किल सब्जेक्ट कहा करते थे। और इस मुश्किल सब्जेक्ट को बिल्कुल आसान करने के लिए, क्योंकि हम इजी राजयोग बोलते हैं इसे, तो इसको बिल्कुल आसान बनाने के लिए आप यहाँ आए हैं, ये सीखने के लिए कि इसमें कुछ भी कलिष्ट, जटिल या मुश्किल बातें नहीं है। ये उतना ही इजी है जितना अपने संबंधी को, पदार्थों को, सुविधाओं को याद करना इजी है, उतना ही इजी है। जैसे कहते हैं, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, जहां जहां आपका अटेंशन जाता है वहीं वहीं आपकी एनर्जी फ्लो करती है, वहीं जाती है आपकी एनर्जी। अब इसको देखने के लिए, अब क्या क्या चीजें हैं जो हमें हमेशा जरूरत पड़ेगी, और वो जरूरत ही आपके अंदर क्या क्या काम करती है। देखिए, अभी आप सब यहीं बैठे हैं, हम एक छोटा सा सीन बनाते हैं, वो सीन आप अपने अंदर बना के देखिए। मैं आपको एक छोटी सी फिल्म दिखाती हूँ, वो फिल्म आप देखते जाइए। यहाँ आने से पहले समझो आप अपने घर से आए हैं, अपने अपने कमरे से आए हैं, अभी तो आप समझो वो आपके फ्लैट है, आपका घर है, और आप अपने घर से यहाँ आए हैं, तो आपका घर आपको दिखाई दे रहा है ना, सबको अपना अपना घर। उस घर की रसोई में आप गए, आपने पहले चाय पी, चाय कॉफी नींबू पानी जिसने जो पिया, वो पीने के बाद आप किचन की रसोई, किचन में गए, और वहां जाने के बाद आपने उस कप को धोया या आपने सिंक में रखा, राइट। तो जैसे आपने सिंक में रखा उसे, तो फिर आपको लगा कि धो देना चाहिए, तो आपने एक टैप खोला, वो टैप में पानी नहीं आ रहा था, फिर आपने दूसरा टैप खोला, अपने हाथ धोए या कप धोया और आप आ गए, यहाँ आके हॉल में बैठ गए, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, आपका दृश्य बन रहा है। दृश्य बनाना किसका काम है, किसका काम है? मन और बुद्धि का तीसरे नेत्र से हम देख रहे हैं ना, यहाँ घर तो है नहीं आपका, फिर भी आप यहाँ आ गए हैं घर से तीसरे नेत्र से देख रहे हैं। आपने चाय पी, कप धोया, सिंक का एक टैप खोला, उसमें पानी नहीं आ रहा था, आपने दूसरा टैप खोला और उसमें पानी आया और आपने हाथ धोया। आप यहाँ आकर बैठ गए एक घंटे के लिए, तो एक घंटे के लिए आप आके बैठ गए। आप डरना मत, ये आपके लिए नहीं है, यहाँ यही तो डर की बात है नहीं, टीचर से यहाँ कोई डरता ही नहीं है। तो फिर आप जब यहाँ बैठे हैं, आपको बैठे बैठे याद आया कि ओहो वो नल तो मैं खुला छोड़ आया, कौन सा, पहले वाला, उसमें ताजा पानी आता है, ताजा पानी का टाइम नहीं था तो वो फ्रेश वाटर नहीं आया उसमें, जो वाटर वर्क्स का पानी आता है तो वाटर वर्क्स का पानी नहीं आया। और अब आप यहाँ बैठे हैं, 10 मिनट बाद आपको थॉट आया वो पानी आ गया होगा, आपकी सोसाइटी में बूस्टर है पानी का या वाटर वर्क्स का पानी शुरू हो गया, बूस्टर ऑन हो गया या जो भी है, वाटर वर्क्स का पानी आ गया, उस फ्रेश वाटर में, फ्रेश टूटी में आपका फ्रेश वाटर आ गया और आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पानी बह रहा है फुल फोर्स में, खूब फुल अच्छे से प्रेशर से पानी आया और खूब पानी बह रहा है। और आपके सिंक में, उस किचन के वॉश बेसिन में कुछ मटर का दाना, कुछ आलू का पीस, कुछ और चम्मच कुछ अटका हुआ है आउटलेट में, क्या बोलते हो आप उसको, आउटलेट मोरी, ऐसा ही ना, तो उसमें वो अटक गया है कुछ, तो कुछ उसमें पीसीज अटके हुए हैं, कुछ चम्मच वगैरह अटक गई है और उसमें पानी भर रहा है, आपके उस सिंक में, वॉश बेसिन में पानी भर गया, पानी का प्रेशर बहुत है, पानी फुल भर गया, अब पानी स्लैब पर चल रहा है और स्लैब से पानी नीचे गिरना शुरू हो गया और सारी किचन में, सारी किचन में किच 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 पानी पानी, इतना सीन देख लिया आपने। इसके बाद आप यहाँ हैं, भाइयों की वाइफ किचन में गई या बहनों की सास या बड़ी माताएं तो उनके बच्चे, बहू या बेटा बेटी रसोई में गए, किचन में गए, राइट। अब जब वो वहां गए तो वो आपको, उनको पता है कि आप ही गए हैं वहां, वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे और क्या बोल रहे होंगे वो आपको सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा, आपकी वाइफ क्या बोल रही होगी, माय गॉड 20 साल हो गए सिखाते हुए तो भी यही हाल है इनका, हमेशा नल का खुला छोड़कर जाते हैं। आपकी बहू क्या बोल रही होगी, आपकी सास क्या बोल रही होगी, वो भी आप यहाँ बैठे सुन सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। तो ये काम किसका है, मन बुद्धि का। मन और बुद्धि की आंख इतनी तेज है और ऐसा काम करती है, तो इतना इजी है, इतना ज्यादा इजी है मेडिटेशन करना। जैसे आप यहाँ बैठे अपनी किचन में चले गए, आपने नल खोला, आपने उसमें पानी भरा हुआ देखा, पानी बहता हुआ देखा और आपको जो वहां बोल रहा है वो आपको सुनाई दिया और महसूस हुआ, इतना ही इजी है मेडिटेशन करना। तो इसलिए हम सभी इस बात को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे लिए योग करना भी इतना ही इजी है, इसमें मुश्किल काम कुछ भी नहीं है। परमात्मा को याद करना, उससे मिलना, उससे दोस्ती करना, उससे इवन घर के काम भी करवाना और फील करना वो एनर्जी कि जो आप नहीं कर पाते थे वो आपने आधे घंटे में कर दिया, ऐसी एनर्जी महसूस भी करना, ये आपके हाथ में है, आप हमेशा कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप खुद देखेंगे कि ये चीजें जो आप महसूस कर रहे हैं ये आपके लिए कितना इजी हो सकती है। अब आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इजी राजयोग को और इजी कर देंगी। कई चीजें हमारे हाथ में होती हैं, कई चीजें हमारे वश से बाहर होती हैं। जो वश से बाहर है वो यही है जो आप हमेशा बोलते आए, अब तक कितनी बातें बोलते आए, बच्चों को कंट्रोल करना, अपने अकॉर्डिंग चलाना, उनको ये कहना कि बेटा मोबाइल मत छेड़ो, बेटा एक घंटे से ज्यादा गेम नहीं खेलनी है, बहुत मुश्किल है। एक घंटे बाद तो वो छोड़ते ही नहीं है, कहते ही रहेंगे मम्मा बस, पापा बस, बस थोड़ी सी देर, मम्मा बस। बच्चों को कंट्रोल करना आज मुश्किल है, कल, परसों, एक महीने बाद, दो साल बाद और भी ज्यादा मुश्किल होगा। क्या आसान हो जाएगा? मुश्किल होगा। आपकी हेल्थ आज जितनी अच्छी है, दो साल बाद, दस साल बाद, बीस साल बाद कैसी होने वाली है? डिटीरियोरेट होगी, इससे ज्यादा अच्छी नहीं होगी, जवान होने वाले नहीं है। आप उसको मेंटेन करके रखें, ये आपके हाथ में है, ये आपके कंट्रोल में है, राइट? आप आराम से यहाँ बैठे हैं, अचानक बहुत तेज आंधी चलने लग जाए, बरसात होने लग जाए, ये आपके कंट्रोल में है? नहीं है। ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, मौसम आपके कंट्रोल में नहीं है, पड़ोसी आपके साथ कैसा बिहेव करेगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है, बच्चे बड़े होकर कैसे बनने वाले हैं, कैसा बिहेव करेंगे ये आपके कंट्रोल में नहीं है, है ना? आपका स्वास्थ्य, तबीयत, पड़ोसी, संबंधी, ये कितनी चीजें हैं। धन इतना ही आता रहेगा या इससे ज्यादा आएगा या इससे कम आएगा, ये कंट्रोल में नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज कभी कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ बैठे हों, छत गिर जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ये हमारे कंट्रोल में है। कितनी चीजें हैं जो अनकंट्रोल्ड है, बियॉन्ड कंट्रोल है, और हम सब चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये मनुष्य की फितरत है, वो सब चीजों को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है कंट्रोल करना, हम उसको भी कहते रहते हैं कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो है हमारा मन। आपका मन आपके सबसे ज्यादा नजदीक है, आपके कंट्रोल में है, उसको भी यही बोलते रहते हैं कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। मन में इतने थॉट चल रहे हैं, मन में इतना कुछ आ रहा है, माय गॉड, ओवरथिंकिंग, ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है, डॉक्टर्स के पास जाके बताते हैं कि कुछ कीजिए, ओवरथिंकिंग का कोई इलाज बताइए, नेगेटिव सोच का कोई इलाज बताइए, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है ओवरथिंकिंग, नेगेटिव सोचना, वेस्ट सोचना, तो क्या ये किसी और के कंट्रोल में है? आपका मन किसी और के कंट्रोल में है? बताइए, ये आपके कंट्रोल में नहीं है तो क्या किसी और के कंट्रोल में है? नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ही कंट्रोल में, आपके नियंत्रण में है। इसी को ठीक करने की कोशिश करनी है, इसके लिए ही आप यहाँ आए हैं। और ये जो आए हैं, इसमें आप खुद फील करेंगे, जितना कनेक्शन अच्छा होता जाएगा उतना ही आपके अंदर की शक्तियां बढ़ती जाएंगी। आप खुद महसूस कर सकेंगे कि आपकी शक्तियां आपकी पूरी दिनचर्या को बहुत अच्छे से चला सकती हैं। ये पंखा कम, ठंडक ज्यादा है। तो इसके लिए हम छोटी छोटी वो प्रैक्टिकल बातें याद रखेंगे जो हमें आज से ही करनी है, आज से करनी है। इसके पीछे एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताती हूँ कि चंडीगढ़ में ज्यादातर सेवा होती है, और मधुबन, यहाँ इसे हम मधुबन बोलते हैं, शांतिवन में भी बहुत आना होता है, तो यहाँ बहुत भाई बहन जो नए आते हैं उनका एक एक्सपीरियंस होता है। ये थोड़ी ठंडक कम कर दो, हाँ बंद कर। तो एक भाई, बड़े ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, वो यहाँ आए थे, और आने के बाद उन्होंने जो शिविर किया, ऐसे ही कोर्स किया, ये तो चलो कॉन्फ्रेंस है, उसमें कोर्स में बहुत सारी चीजें थी। वो कोर्स में ये था कि आप पूरा दिन में 3-4 लेसन्स होते थे, शिविर था, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। शीलू दीदी थे, बड़े अच्छी क्लासेस कराई उन्होंने, ऊपर माउंट आबू गए, वहां पर ये चलता रहा, और यहां से 3 दिन में जाने के बाद उन्होंने पक्का डिसाइड किया कि अब इसके बाद मैं शांत रहूंगा, मैं परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ूंगा शांति के सागर से, और मेरे अंदर शक्तियां बढ़ रही हैं, ये उन्होंने फील किया और पक्का कर लिया कि मैं अब शांत रहूंगा, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आता है। ये उन्होंने वहां जाके, वो चंडीगढ़ से आए थे तो वहां जाके उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सुनाया, वरना हमें कैसे पता होता। बड़ा वंडरफुल एक्सपीरियंस था, शायद आप भी ऐसा सुनाएंगे इसीलिए वो आपके शायद कुछ मैच करेगा, तो मैं आपको सुना रही हूं। ये बहुत पुरानी बात है, तब मोबाइल फोन नहीं थे, 1996 की बात है। तो 96 में वो कोर्स करके निकले और फाइनल कर लिया था उन्होंने कि मैं वहां ज्ञान सरोवर गया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने पक्का कर लिया, ओम शांति का मतलब मुझे पक्का हो गया, मैं शांत आत्मा हूं, तो मुझे अशांत होना भी नहीं है, अशांत करना भी नहीं है, राइट। ये उनको समझ में आ गया। फिर उनको ये वाली बात भी समझ में आ गई कि आत्मा ड्राइवर है तो मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए, ये ना बोलना पड़े कि मैं मुंह से बोलना नहीं चाहता था, मुंह से निकल गया, मुझे बोलना ना पड़े ऐसा, मेरे को बोलने के बाद सॉरी फील ना करनी पड़े, ये उन्होंने फाइनल किया कि बोलने के बाद मुझे अफसोस ना हो, गलती ना हो, मैं आत्मा अपनी गाड़ी की मालिक हूं, मैं ड्राइवर हूं, तो ये सब चीज मेरे कंट्रोल में है, तो ये उन्होंने फाइनल किया। अच्छा, वो यहां से नीचे उतरे, उन्होंने बताया कि हमारा लास्ट दिन था और हम नीचे आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। ट्रेन से आना इजी है, भारत से सारे इंडिया से कनेक्टिविटी है, तो वो वहां पहुंच गए। कुदरती उस दिन ऐसा था कि किसी कुली का एक्सीडेंट हुआ था और कुलीज की हड़ताल थी, कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई लड़ाई हुई, कुछ ऐसा हुआ, तो उसकी वजह से सभी कुली स्ट्राइक पर थे, कोई भी कुली भार उठाने के लिए या वो गाड़ी चलाने के लिए नहीं था, तो उनके पास ज्यादा सामान नहीं था, बट कभी इतना वेट भी नहीं उठाया था, बड़े ऑफिसर थे, तो उनको लगा भी कोई होना चाहिए जो मेरी अटैची केस और मेरा बैग और एक छोटा सा सुंदर सा बेडिंग था उनका, उनको मालूम नहीं था कि यहाँ कमरे तैयार मिलते हैं, कमरे बेडिंग सब तैयार मिलता है, तो इसीलिए ये सब उठाने के लिए कोई चाहिए, शायद स्टेयर्स पार करके जाना था। तो उन्होंने बताया कि मैंने इधर उधर देखा तो जो रेलवे के मजदूर होते हैं भाड़े के, जो बड़े बड़े वो पेटियां ट्रंक जैसे उठाते हैं, तो वो रेलवे का एक मजदूर, एक पल्लेदार और मजदूर वो आ गया। उसने आके मुझसे कहा कि साहब कोई मदद की जरूरत है, तो मुझे तो चाहिए था, अब 96 की बात है ये, तो कहते मुझे जरूरत थी, तो मैंने उसे कहा भाई हाँ मेरा ये थोड़ा सा सामान है और मैं इनको उठा के, ये स्टेयर्स पे नहीं चढ़ सकता हूँ, तो प्लीज आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाइए। उसने कहा ठीक है। अब उसने क्या किया कि वो झुक के, जवान लड़का सा था, सिर पर बाल थोड़े कम थे, तो वो झुक कर सामान उठाने लगा। तो जब वो सामान उठाने लगा तो अटैची उठाई, बैग उठाया, तो वो भाई साहब उसके सिर पर झुके हुए थे, बता रहे थे ये सामान मेरा है। जब वो सीधा हुआ तो उसका मजबूत सिर उनकी कोमल सी नासिका पे लगा और इतने जोर से लगा कि बेचारे एकदम बिलबिला उठे, क्योंकि वो तो जवान लड़का था, एकदम प्रेशर से ऐसे नीचे ऊपर हुआ तो उसका सिर उनकी नाक पे लगा, दर्द हुआ, तो बड़ा गुस्सा आया। फिर उनको याद आया ओम शांति, गुस्सा नहीं करना है, गलती मेरी है, मैं इससे झुका क्यों हुआ था, मुझे दूरी रखनी चाहिए थी, तो मेरा कसूर है ये, इसका कसूर नहीं है, मैंने इसको कुछ नहीं कहना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं शांत आत्मा हूं। उसके पीछे पीछे चल दिए। अब उसके पीछे पीछे चले तो वो तेज तेज चल रहा था, बहुत तेज, और थोड़ा शहर के और इस तरह के लोग थोड़ा डर भी जाते हैं कि भाई सामान लेकर भाग ही ना जाए, तो बिल्कुल उसके साथ साथ दौड़ रहे थे, ये भी तेज चलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि 58 के करीब एज थी इनकी और थोड़ा टांगों घुटनों में दर्द भी था, पर कोशिश कर रहे थे उसके साथ साथ तेज चलने की। अब वो चलने लगे, जैसे वो मुड़ने लगा, बैग इतना लंबा था, उसकी बेल्ट इतनी लंबी थी कि बैग झूल के उनके इस तरफ लगा, उनकी बॉडी के साइड में लगा, और ऐसे लगा कि वो बेचारे एकदम लड़खड़ा गए, तो वो स्टेबल नहीं रह पाए, गिरने को हो गए, सीढ़ी से गिरने लगे, तो उन्होंने रेलिंग पकड़ ली और अपने आप को बचाया। और फिर बहुत जोर से गुस्सा आया, उन्होंने बताया ये कि मुझे बहुत जोर से गुस्सा आया और फिर मैंने अपने को मंत्र याद कराया, कौन सा, ओम शांति, मैं शांत आत्मा हूं, मुझे अशांति नहीं फैलानी, मुझे गुस्सा नहीं करना, मेरा कसूर है, मैं इसके पास पास चिपक के क्यों चल रहा हूं, मुझे दूरी रखनी चाहिए। ऐसे सोच के उन्होंने खुद को समझाया और वहां पहुंच गए। वो सामान उतारने लगा, उसने वो छोटा सा बेडिंग उतारा, ये उतारा, अच्छा कुली की तरह उसके पास वो कपड़ा नहीं था, वो कपड़ा सा करके ऐसे गोल गोल सिर पे रखते हैं ना, तो वो साफा सा नहीं था उसके पास, तो उसने वैसे ही उसका बड़ा सा अटैची केस ऐसे सिर पे रखा हुआ था। उन दिनों इतने ये व्हील्स वाले रिवॉल्विंग से भी अटैची केस नहीं होते थे, तो वो अरिस्टोक्रेट का मजबूत सा अटैची था और वो उसका हैंडल ढूंढने लगा। हैंडल ढूंढते ढूंढते अटैची फिसल गया उनके सिर से, और फिसल गया और वो पास खड़े थे, उनके कंधे को जख्मी करता हुआ, चोट पहुंचाता हुआ वो अटैची नीचे गिरा। अटैची केस टूटा नहीं वो सूट केस, क्योंकि मजबूत था, अच्छा था, तो वो नीचे गिरा और एकदम गुस्सा आया। खुद के भी चोट लगी, सूटकेस को भी चोट लगी और हो सकता है टूट जाता। बहुत जोर से गुस्सा आया, फिर खुद को समझाया, क्या समझाया, ओम शांति, मेरी गलती है, मैं इसके पास क्यों खड़ा था, मुझे थोड़ा दूर खड़े होना चाहिए था, अजय तो शुक्र है अटैची बढ़िया है, टूटा नहीं, तो चोट तो लगी। अपने आप को समझा कर उन्होंने उससे पूछा कितने पैसे, उसने जो भी कहा होगा 50-60 रुपए उन्होंने जेब से निकाल के वो पैसे दिए, और जब उसको दिए वो बेचारा हाथ जोड़ के थोड़ा सा कांपता हुआ सा, डरा हुआ सा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, साहब आप तो देवता हैं साहब, 3 बार मार खा के भी पैसे दे रहे चोट खाई आपने 3 बार, उसके बाद भी आप अमाउंट पूछ रहे हैं, पैसे पूछ रहे हैं और दे रहे हैं, कुछ नहीं कहा मुझे, तो आप तो साहब देवता हैं। तो जब वो ये अपना एक्सपीरियंस सुना रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैंने 3 बार सहन किया और अपने आप को समझा समझा कर बड़ा मुश्किल से सहन किया, तो भी उसने मुझे देवता कह दिया, और अगर मैं सचमुच में सहनशील हो जाऊं, जैसे हमारे ये भाई बहन है जहां वो सुना रहे थे, हमारी दीदियां हैं, भाई बहन है, मैं सचमुच में सहनशील हो जाऊं, मैं सचमुच में सहन करना सीख जाऊं, तो मैं सचमुच में देवता बन ही जाऊंगा, मुझे पक्का विश्वास हो गया इस बात से। अब आप सोचिए कितनी बार आप अपने आप को समझाते हैं, जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो क्या आप अपने आप को समझाते हैं कि नो रिएक्शन, मुझे थोड़ा सा चुप रह जाना चाहिए, थोड़ा बात को संभाल लेना चाहिए, अपने आप को समझाना कि मुझे सहन कर लेना चाहिए या पैकअप कर लेना चाहिए, तो ये क्या हम अपने आप को समझा रहे होते हैं? हम नहीं समझाते हैं, इसीलिए रिएक्शन, लड़ाई, झगड़ा, ये सब कुछ होता रहता है। तो अब मुझे जो करना है, मेडिटेशन का सबसे पहला फायदा, कनेक्शन क्या होता है, मैं आत्मा हूं ये हमें पता है, हमें ये भी पता है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमें ये भी मालूम है, परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, आपको ये भी ज्ञान है कि वो निराकार है, ज्योत स्वरूप है, उससे लाइट लेनी है, रोज की प्रैक्टिस क्या करनी है, उससे लाइट लेनी है, माइट लेनी है, शक्ति लेकर फिर सारे दिन में अपनी बैटरी चार्ज करके काम करना है। जो भगवान से चार्ज होकर सारा दिन काम करेगा उसकी स्थिति कितनी अच्छी होगी, कितनी ऊंची होगी, अब आप सोच सकते हैं। इसके लिए हमारे अंदर जो शक्तियां हैं ऑलरेडी, कोई थोड़ी कोई ज्यादा, वो बूस्ट होती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो ये चीज आज आप देख कर जाएंगे, सीखेंगे, ये टाइम थोड़ा है हमारे पास और ये बहुत बड़ा सेमिनार है एक तरीके से, कि एक एक शक्ति हमारे अंदर आए कैसे, हमें समझ कैसे आए कि ये शक्ति को मुझे यूज करना है। लेकिन क्योंकि आप अलग अलग सेशंस में ये बातें सुन रहे हैं तो ये बात तो समझ में आ ही गई कि हम सुने कितना भी, प्रैक्टिकल कौन करेगा? प्रैक्टिकल खुद करेंगे। जो सुना रहा है उसके पास प्रैक्टिकल में है कुछ, 50% 70% कुछ है। जैसे डॉक्टर रश्मि कह रही थी कि मैं आपको बता रही हूँ, यहां से भाषण कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आई एम परफेक्ट, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। परफेक्ट नहीं तो परफेक्शन के नजदीक है, बहुत विशेष आत्मा है वो। ऐसे ही उनके पास कुछ है तभी वो आगे कन्वे कर पा रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, लेकिन वो भी इसके 100% एफर्ट्स में लगे हुए हैं। आप भी 100% करेंगे तो फिर कितने परसेंट आएंगे आपके पास मार्क्स, वो आप देख सकेंगे। क्योंकि कुछ भी अच्छा रिजल्ट लेने के लिए मेहनत तो 100% ही की जाती है ना, फिर जाके 90, 95, 98% मार्क्स आते हैं। कोई मेहनत करता है क्या 90% मार्क्स लेने के लिए? मेहनत 100% की जाती है। तो आप 100% देवता बनने वाले हैं, आपकी डिविनिटी जागृत होने वाली है। इसके लिए जो मेहनत करेंगे वो मेहनत है, कनेक्शन उतना ही इजी है जैसे शारीरिक पिता को याद करना इजी होता है, उतना ही इजी है। आत्मा अपने पिता के पास बैठे, कनेक्शन जोड़े और नो फॉर्मेलिटी, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है कि हाथ जोड़कर करना है, हाथ खोलकर करना है, चौकड़ी लगाकर करना है, घुटने पीछे करके बैठना है, खड़े होकर करना है, आधे घुटने करके, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। ये सब कुछ नहीं करना है। जैसे भी आप हैं, किसी भी तरीके से आप सोफा पर बैठे, चारपाई पर बैठे, आसन बिछाकर बैठे, जैसे भी आप बैठे, लेकिन मन की तार वैसे ही जुड़ी होनी चाहिए जैसे रोज कहीं ना कहीं जुड़ती है। सब्जी लेने जाना है, सब्जी मंडी से जुड़ जाती है, बेटे ने स्कूल से आना है उससे जुड़ जाती है ना, कुछ भी लेने खरीदने बात करने जाना है उस व्यक्ति से जुड़ जाती है, वो थोड़ा थोड़ा जुड़ती है। वो उसी के कारण, क्योंकि बहुत जगह जुड़ती है सारा दिन, इसीलिए शिकायत क्या रहती है? शिकायत क्या रहती है कि सब जगह जुड़ जाती है लेकिन भगवान के साथ नहीं जुड़ती है, उसके साथ कनेक्शन नहीं जुड़ता, उसके साथ दोस्ती नहीं हो पा रही है। और उसके साथ 100% दोस्ती चाहिए, उससे काम नहीं चलेगा। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की पुन आध, उससे काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए 100% रिलेशन, दोस्ती, प्यार, संबंध, तब बात बनेगी। और वो जो बात बनेगी उसमें कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, किस तरीके से संध्या वंदन करना है, पाठ करना है, सुबह की आरती करनी है, माला जपनी है, बहुत शुद्धि से बोलना है, संस्कृत बोलनी है, अरबी बोलनी है, फारसी बोलनी है, नॉट एट ऑल। भगवान के पास कोई भाषा नहीं है, उसे आप जिस भाषा में याद करते हैं वो उसी भाषा में जवाब देता है। उसे आप किसी भी लैंग्वेज में याद कर सकते हैं क्योंकि उसके पास लैंग्वेज के संस्कार नहीं है। वाइब्रेशंस, भाव पहुंचते हैं और भाव में ही उत्तर आता है। तो इसीलिए भाषा बीच में माध्यम नहीं है। मौन प्रार्थना जल्दी पहुंचती है ईश्वर तक क्योंकि मुक्त होती है शब्दों के बोझ से, ये भी बोझिल करते हैं उसको। तो मौन प्रार्थना, मूक बातें जल्दी पहुंचेंगी। तो भाषा की जरूरत नहीं, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, किस वक्त याद करें वक्त की कोई पाबंदी नहीं, आप सारा दिन याद कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। सुबह का टाइम या अमृत वेला हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस वक्त सचमुच यहाँ से नेक्टर निकलता है। अगर आप रात को प्रॉपर जल्दी सोए हैं, टाइम पर सो गए हैं, क्योंकि बहुत से इसीलिए नहीं आए कि रात को वो कल्चरल प्रोग्राम एंजॉय करते रहे, बहुत एंजॉय किया और अब नींद नहीं खुली, तो कोई बात नहीं, जिसके भाग्य में था वो पहुंच गए, इसी को भगवान का बुलावा कहते हैं। तो हुआ ये कि जैसे जैसे हम जल्दी सो गए और जल्दी उठेंगे तो उस वक्त हमारे मास्टर हार्मोन्स जागृत होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जिसको आपको समझाया होगा हाइपोथैलेमस के पास। तो वहां से जब मास्टर हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं वो हमारे थायराइड पैंक्रियाज ओवेरी सबको प्रभावित करते हैं। बहुत तेजी से इनका स्राव होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत स्लो होता है तो भी व्यक्ति स्लो हो जाता है, कुछ समस्या आ जाती है। लेकिन अगर सुबह आप जल्दी उठते हैं तो अमृत बहता है, मींस कि बहुत पॉजिटिव हार्मोन्स सारे शरीर को सींचते हैं और आपकी स्थिति अच्छी रहती है। इसीलिए सुबह जल्दी जागना बहुत बहुत अच्छे संस्कारों में शामिल है। आप जल्दी जागेंगे तो अपने बच्चों को कह पाएंगे, आप ही नहीं उठते हैं और बच्चों को कहो बेटा सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करनी चाहिए, बहुत अच्छा होता है, बेटा सुबह पढ़ना चाहिए, तो वो किसको कहेगा, आपको देखेगा पहले। हो सकता अभी तो आप दाना पानी खाना दे रहे हैं मुंह पर ना बोले, वैसे तो आजकल बच्चे शर्माते नहीं है बोल देते हैं, तो नहीं तो बोल ही देगा, नहीं बोलेगा तो भी उसे पता तो है कि यू आर नॉट गुड एग्जाम्पल। तो इसलिए जरूरी है अच्छा एग्जाम्पल बनने के लिए सुबह जल्दी उठना, तभी आप दूसरे को कह पाएंगे। इसके बाद बैठना मेडिटेशन में और परमात्मा से शक्तियां लेना खींचना, ये सुबह का जरूरी है, वरना सारे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह की शुरुआत अच्छी हो इसलिए कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठकर भगवान के साथ दोस्ती करें, संबंध जोड़ें। हम बार बार ये शब्द बोलेंगे, संबंध जोड़ें। अच्छा, इस संबंध में कुछ चीजें जो हमारे पास नेचुरल रूप से आने लगेंगी वो है कि हम पहले जोड़ने की बात करते हैं, छोड़ने की बात नहीं करते हैं। हम पहले कहने लग जाएं कि ये छोड़ दो, शराब बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दो, ऐसे करना छोड़ दो, टाइम वेस्ट करना छोड़ दो, ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी, है ना, ये विकार छोड़ने पड़ेंगे, ये सब छोड़ेंगे तो भगवान से संबंध जुड़ेगा। बड़ा मुश्किल है, अगर किसी को कहो वो कहेंगे बहन जी मैं तो ना यहाँ आना ही छोड़ दूंगा, यही सबसे इजी काम है। इतनी पाबंदियां, ये सब छोड़ना मुश्किल काम है जी, मैं तो यही आना छोड़ दूंगा। तो बेटर है पहले जोड़ना सीखें। जब हम जोड़ेंगे, जैसे एग्जाम डेज में बच्चे को कहना नहीं पड़ता कि बेटा मूवी नहीं देखनी, बेटा टाइम वेस्ट नहीं करना, बेटा मैच नहीं देखना, ये सब जगह ऐसे नहीं करना, आपको कहना नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिक उसको पढ़ाई की लगन लगती है, अच्छे एग्जाम अच्छे मार्क्स लेने हैं, उसका सब कुछ अपने आप छूट जाता है। एग्जाम डेज में व्यर्थ घूमना फिरना बातें टाइम वेस्ट सब छूट जाता है। यही यहाँ करना है, हम जितना परमात्मा से रिलेशन जोड़ेंगे छूट अपने आप जाएगा। तो हमें छोड़ने की चिंता नहीं, किसकी चिंता करनी है, जोड़ने की चिंता करनी है। जोड़ेंगे मन में शांति स्थिरता अपने आप आएगी, स्टेबिलिटी अच्छी होगी, आपके डिसीजन अच्छे होंगे। ये सारी शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश करेंगी और इन शक्तियों को एक एक करके देखें तो आप इसे एंजॉय करेंगे कि हाँ है तो सही मेरे अंदर, सिर्फ इसको यूज करना है। कैसे कैसे करना है, पैकअप करने की शक्ति। आपने देखा होगा जब आप यात्रा पर जाते हैं, कहीं भी जर्नी पर जाते हैं, तो सामान आप सारा 2-3 आइटम्स में, नग बोलते हैं, उसमें आप समेट लेते हैं। तो इतने में आपने समेट लिया और जब जाके इसको घर जाके फैलाते हैं तो पूरे बेड पे बिखर जाता है ये, तो इसको कहते हैं पावर टू पैकअप। ये भी बिना प्रैक्टिस के याद नहीं रहता है। तो निर्णय शक्ति, तो पैकअप करने की पावर हम यहां महसूस करेंगे। सीक्वेंस में नहीं है ना ये, तो हम खुद महसूस करेंगे जी, तो इस पैकअप करने में हम खुद महसूस करेंगे कि हमारा जो सारा दिन बहुत कुछ इधर उधर फैला रहता है उसको ठीक करने का तरीका है बुद्धि। देखिए कहाँ कहाँ जाती रहती है आपकी, इधर सामान, उधर लोग, उधर की बातें, यहाँ की बातें, ये सब जगह बात बहुत फैलती है। आप ये सोचें कि एक रिक्शा वाले से लेकर राष्ट्रपति तक कितना कुछ माइंड में भरा हुआ है गार्बेज की तरह, यहाँ वहां कितनी जगह बुद्धि जाती है और खुद उसके बीच में अपने आप को बिखरा हुआ सा फील करते हैं, कितना बिखरा हुआ फील करते हैं। और पैकअप करना क्या है, जैसे कनेक्शन जोड़ा आपकी बुद्धि आपको बताएगी किस तरह से काम करें, अपना काम किया और अपने आप को वापस ले आए, कम बैक टू नाउ, जो भी आप कर रहे हैं करने के बाद अपने आप को वापस ले आते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं पैकअप करना। अगर आप ये नहीं करते हैं, पैकअप नहीं करते हैं, तो तारे कहाँ कहाँ बिखर जाएंगे। अगेन सोचकर देखिए, इधर की बात याद रहेगी, उधर की याद आएगी, इसका फोन आएगा, आप जिसका फोन आया उसके आप दोस्त बन जाएंगे, माँ का फोन आया आप बेटे का रोल प्ले करने लग जाएंगे, किसी और का फोन आया उससे बात करेंगे, किसी से मिलने गए उससे, इतना सब सामान लेकर आपकी यात्रा कैसे अच्छी हो सकती है। अगर हम यात्रा सुखद चाहते हैं तो हम कंफर्टेबल होना चाहते हैं, कंफर्टेबल का मतलब अपने आप को पैकअप करना सीखें। ये आपके हाथ में है, ये दूसरे के हाथ में नहीं है, दूसरे के कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट इज टॉलरेंस। टॉलरेंस की विशेषता ये है, टॉलरेंस, कि हर चीज जो भी हम यहां देखते हैं, जो भी हम यहां देखते हैं सहन करने की, उसमें हमें कितनी चीजें हैं जो हमें लगता है कि इतनी बड़ी बात है नहीं, सिर्फ मन को बताना है, दूसरी निर्णय शक्ति है। तो टॉलरेट एक बार कर लिया उसके बाद आपका संस्कार बन जाएगा, आदत पड़ जाएगी आपको। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। सुकरात यूनान के महान दार्शनिक हुए हैं, उनकी विशेषता रही है कि बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के थे। एक बार उनके दो शिष्य उनके पास आए, उन्होंने कहा कि सर हमें कुछ पूछना है, हम आपसे वहीं बैठकर पूछेंगे, आपके पास आएंगे और आपके घर में बैठकर आपसे पूछेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब जैसे ही वहां से वो आए, घर में दूर से पोर्च में आ रहे थे, तो उनकी जो वाइफ थी सोक्रेट्स की, वो बहुत बहुत गुस्से वाली नेचर की थी, बहुत लड़ाके स्वभाव की थी। तो उसने क्या किया कि वहीं से उसको गुस्सा करना, गाली देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो राजा के परामर्शदाता थे, राजा के एडवाइजर थे। तो वो गुस्से से बोल रही, एक तो राजा ने तुम्हें सिर चढ़ा रखा है, एक तुम ऐसा करते हो, अब अपने चेले चमचों को लेकर आ गए, फिर कहोगे इनको दूध दो, इनको मिठाई खिलाओ, स्वीट्स खिलाओ, ये करो। तो उन दिनों कोई चाय पानी तो नहीं होता था, तो खूब गुस्से से सोक्रेट्स को बोलती रही और वो बड़ी शांति से सुनते हुए आगे चलते रहे। अपने कमरे में गए, उन्होंने कैंडल जलाई और वो दोनों जो शिष्य उनके पीछे आ रहे थे, तो वो बड़े हैरान होकर देख रहे थे कि ये स्त्री कौन है, ये औरत कौन है इनके पास। तो उन्होंने बड़ा संकोच से पूछा कि सर ये औरत, उन्होंने बड़े शान से कहा, ये मेरी वाइफ है, शी इज माई वाइफ। कहते सर इतनी इल मैनर्ड है ये, इसको बात करने की तमीज नहीं है, आप इतने महान गुरुदेव गुरुजी और ये कैसे बात कर रही है आपसे। अब उनको अंदर क्या सीन था कि गुरुजी की वाइफ गुरु माँ जैसी होगी, है ना, हम उनको भी इज्जत देंगे, वो हमें आशीर्वाद देगी, ब्लेसिंग देगी। तो उनके मन में तो ये सीन बन रहा था, और ये कैसे बोल रही है सर इनको तो बात करने की तमीज तक नहीं है, ये तो आपके साथ रहने लायक ही नहीं है, ये उनके शिष्यों ने बोला। सोक्रेट्स ने बड़ी शांति से कहा, इस दुनिया में ये औरत सिर्फ मेरे ही साथ रहने लायक है। सिर्फ मेरे ही साथ रहने लायक है, क्योंकि मुझे ही पता है इसको कैसे झेलना है, कैसे सहन करना है। और दूसरी बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली, हाइट ऑफ पॉजिटिविटी, कि ये इसलिए मेरे साथ रहने लायक है क्योंकि ये मेरी सहन शक्ति का पैरामीटर है, ये चेक करती रहती है कि मेरी सहन शक्ति बड़ी है कि उतनी की उतनी है। जब हमारी शादी हुई थी तो हम ये गुस्सा करती थी, मुझे भी गुस्सा आ जाता था, फिर मैंने खुद को समझाया कि मैं इतना महान दार्शनिक, लोग मुझे किस नजर से देखते हैं, मुझे थोड़ा चुप रहना चाहिए। फिर मैं शांत रहने लगा, यहां से चुप रहने लगा, फिर धीरे धीरे यहां आग लगती थी, फिर मैंने यहां भी ठंडक की, ये अपने आप के माइंड को भी शांत किया, और अब ये स्टेज आ गई है कि ये गुस्सा करती है, चिल्लाती है, बोलती है, और मैं एंजॉय करता हूं। तो मेरी सहन शक्ति बढ़ती जा रही है। तो टॉलरेंस ऐसी चीज है, आपको बॉर्डर पे लड़ाई नहीं करनी है, आपको अपने केस, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, अपना घर संभालना है, अब उसके लिए तो टॉलरेंस बहुत बहुत जरूरी है। आप नहीं करेंगे तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे, उनको कैसे शिक्षा देंगे। इसीलिए शांत रहकर, सेल्फ एस्टीम की ऊंची स्टेज पर बैठकर, स्वमान में रहकर कि मैं महान हूं इसीलिए मैं सहन कर रहा हूं, सहन करने वाले शहंशाह बनते हैं, अपने आप को ये बात याद करनी चाहिए। सूर्य भाई उस दिन बता रहे थे कि आप दोनों में से कौन समझदार हैं, तो वाइफ ने कहा मैं हूं समझदार, तो कहा समझदार को तो झुकना ही चाहिए, समझदार को अड़ना थोड़ी चाहिए, अड़े लड़े ये समझदारी के लक्षण नहीं है। तो समझदार मीन्स थोड़ा सहन कर लिया, थोड़ा पैकअप कर लिया, थोड़ा झुक गए तो अच्छा रहेगा, आपके रिलेशन हर जगह नॉर्मल रहेंगे और अच्छे रहेंगे, प्रमोशन के चांसेस ज्यादा होंगे, बच्चों के अच्छे घरों से रिश्ते आ जाएंगे, पता लगे बहुत लड़ाके हैं तो बच्चे भी इनके ऐसे ही होंगे, वो अपने आप अंदाजा लगा लेते हैं कि इनको गुस्सा इतना आता है, इनका ऑफिस में ऐसा रुतबा है, इस तरह की इनकी प्रेस्टीज है, तो बच्चे भी ऐसे ही होंगे। तो इसीलिए आपकी सहनशीलता बहुत कुछ आगे ठीक करने वाली है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, भगवान ऐसा ही करता है, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव, मैन गेट्स एंड फॉरगेट, वो सहन कर लेता है, भूल जाता है, माफ कर देता है, और हम उसको लपेटते रहते हैं, याद करते रहते हैं, और या कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेते हैं। तो भगवान की तरह फॉरगिव एंड फॉरगेट, टॉलरेंस के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड सोक्रेट्स जैसा, और अपने आप को पावरफुल बनाना, क्योंकि पावरफुल व्यक्ति ही झुक सकता है और सहन कर सकता है, कमजोर तो अड़ जाएगा, बस रिजिड हो जाएगा। तो इस तरह से इजी है सहन करना, और सहन करने वाले क्या बनेंगे, शहंशाह। ये अपने आप को याद कराना है, बोलना नहीं है किसी के सामने कि देखो मैंने तुम्हें 20 बार तो माफ कर दिया, 21वीं बार अगर तुमने गलती की ना, फिर देखना मेरे से बुरा कोई नहीं है, ये सहनशीलता है। अच्छा, जिसने 25-26 बार सहन कर लिया हो, कई कहते 25 साल हो गए सहन करते हुए, तो मुझे लगा जब 25 साल हो गए तो 26वें साल में क्या प्रॉब्लम आ गई, जब 25 वर्ष हो गए सहन करते हुए तो 26वें वर्ष में तो आदत पड़ जानी चाहिए। जिसने 25 बार सहन किया तो उसको 26वीं बार तो इजी लगना चाहिए, एक्चुअली वो सहन नहीं किया, वो सप्रेशन था, प्रेस कर रहे थे खुद को, जैसे प्रेशर कुकर में वो विसल नहीं आई, दबता गया, स्टीम इकट्ठी होती गई, एक दिन वो बर्स्ट हो गया, वो वैसा हो गया। तो ऐसा नहीं, सहन करना मीन्स बुद्धिमानी यूज करना, डिवाइन इंटेलेक्ट को यूज करना, तो फिर रिलेशंस के लिए, अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है ये। इस दवाई को जरूर यूज करना, इस शक्ति को, और ये विशेषता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि नेल्सन मंडेला को इतनी ज्यादा मार पड़ने के बावजूद, इतना दुर्व्यवहार होने के बावजूद भी वो दे सका, वो दे सके क्योंकि वो महान है, फिर भी वो अच्छा बिहेव कर पाए, क्योंकि अंदर की महानता ऊंची चीज है। जिस पेड़ पर पत्थर मारा जा रहा है तो पेड़ बदले में पत्थर नहीं मार रहा है, फल दे रहा है, क्योंकि जिसके पास जो है वही देगा ना। आप महान हैं, आप अच्छे हैं, तो आप अच्छी चीज ही देंगे, आप माफी देंगे, आप भूल जाएंगे, आप मुस्कुराएंगे. नेक्स्ट इज पावर टू अकोमोडेट एंड पावर टू एडजस्ट. अकोमोडेट करना, एडजस्ट करना, इसके पीछे भी काम करती है सहन शक्ति. सागर में दिखाया इसमें कि सागर में कितनी भी नदियां आए वो अपने किनारे नहीं छोड़ता है जल्दी से ना. नदियां उसमें जाती रहती हैं, नदियां मिलती रहती है. सागर में बाढ़ आ गई, समुन्द्र में बाढ़ आ गई, ऐसा तो बहुत रेयर ही होगा. जब होगा तो फिर कुछ बचेगा नहीं, है ना. वो विस्तार होता रहता, उसमें लहरें आती रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. अंदर से सागर गहरा और शांत होता है. तो इसलिए अकोमोडेट करना, एडजस्ट करना, ये भी बैक में सहन शक्ति होती है तो एडजस्ट करना इजी होता है. अब आप यहाँ आके बैठे, रोज आके आराम से सोफा चेयर्स पे बैठते हैं, अचानक दरवाजा खुला, आपने अंदर प्रवेश किया तो देखा आज कोई है ही नहीं, ना सोफा ना कुर्सियां, और आ गए आप अपने घर से. अभी तो आप अपने रूम से आए हैं, तो खुला है कैंपस, कहीं और जाके बैठ जाएंगे. अब अपने घर से निकल कर आ गए, फिर क्या करते हैं, एक घंटा ही तो बैठना है. थोड़ा जमीन पे बैठ जाएंगे, जो नहीं बैठ सके थोड़ा दीवार का सहारा लेकर बैठ जाएंगे, भाई आ गए तो एडजस्ट कर लेंगे. ऐसे कितनी बार होता है कि कोई काम फॉर द टाइम बीइंग होता है एडजस्टमेंट, हमेशा के लिए नहीं होता है, सारी जिंदगी का नहीं होता है. सारी जिंदगी के लिए उसके आपको वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी, अपने वैल्यू सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा. तो एडजस्ट करना मीन्स अंदर शक्ति है तो आप किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या में फॉर द टाइम बीइंग अकोमोडेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज परखने की और निर्णय करने की शक्ति. पावर टू डिस्क्रिमिनेट, अच्छा बुरा डिसर्न करना. जैसे जौहरी जो होता है वो हीरों को परखता है और फिर वो तोलता है, निर्णय करता है. दोनों चीजें हम साथ साथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितनी हमारी योग से स्टेबिलिटी बढ़ती है उतनी हमारी परखने की और निर्णय करने की दोनों शक्तियां एक साथ बढ़ती है. आप ठीक परखते हैं, ठीक निर्णय कर पाते हैं. अब ये कितनी मजेदार बात है कि एक अंधा जौहरी राजा के दरबार में, उसने परख के दिखाए सच्चे हीरे. काबुल से आया एक व्यक्ति, बहुत बड़ा जौहरी था, वो आया और उसने कहा कि ये मेरे पास ढेर सारे हीरे हैं लेकिन इसमें कांच के सुंदर चमकीले टुकड़े हैं, एक जैसे चमक रहे हैं, कौन है जो ये बता सकता है कि रियल डायमंड कौन से, अलग अलग करे, कौन है आपके दरबार में, आपके राज्य में इतना इंटेलिजेंट जो सच्चे हीरे और झूठे हीरे, नकली हीरे अलग अलग कर दे. सबने कोशिश की, राज्य से बहुत अच्छे अच्छे जौहरी आए और वो नहीं कर पाए. एक बहुत पुराना अंधा जौहरी आया, उसने कहा मैं कर सकता हूं. उसने तांबे की थाली में, परात में वो सारे हीरे रख दिए और वो धूप में जाकर खड़ा हो गया. धूप में खड़ा रहा कुछ देर तक और फिर वापिस आया. वापिस आने के बाद उसने एक एक हीरा, सुंदर बड़े बड़े हीरे थे, एक एक हीरा उठाया, एक अलग थाल मंगवाया और उसमें वो रखता गया. तो जो उसने अंदर दूसरे थाल में रखे, उसने कहा ये रियल डायमंड है, ये असली हीरे हैं. आप सब भी हीरे की बातें तो बहुत करते हैं, पहनते भी होंगे. क्या निशानी होती है उसकी, क्या विशेषता थी असली हीरों की, कैसे उसने अलग कर दिया? शाइनिंग तो पहले देख चुके थे, वो शाइनिंग नहीं थी, शाइनिंग एक जैसी थी. जी जोर से बोलिए. हीरा ठंडा होता है, जब धूप में खड़ा रहा वो 10 मिनट, जिसने बोला ठीक बोला, 10-15 मिनट वो धूप में खड़े रहे, लेकिन जब वापस आए तो जो नकली नग थे वो गर्म हो गए थे, जो नग थे कांच के टुकड़े थे वो गर्म हो गए और असली हीरा ठंडा रहता है. तो आप यहाँ क्या बनने आए हैं? ठंडा हीरा, असली हीरा, शाइनिंग हीरा. ये एक चीज लेकर तो जाइए जरूर, गिफ्ट की तरह. हर जगह लिख दीजिए, किचन में, वॉशरूम में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, मिरर पर, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। आपको खुद लगेगा कि मैं शाइनिंग रियल ठंडा हीरा बन गया हूं। और आपके अब समाज को जरूरत है, जब आप गर्म थे तो आपकी जरूरत नहीं थी ऑफिस में, तो ना आए तो अच्छा है बंदा, ऐसे बोलते थे ना, गुस्से वाला, परेशान करने वाला, नुक्स निकालने वाला, टेंशन लेने वाला, टेंशन देने वाला, उस दिन उसकी छुट्टी आज ऑफिस में, वो आया ही नहीं, सब बड़े हैप्पी हैं। तो सोचो आप कौन सी पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं। ऑफिस में जाते ही जिसकी जरूरत फील की जाए, जिसकी प्रेजेंस मीनिंग रखती हो, ऐसा आप बनना चाहते हैं, तो जितना आप स्टेबल होंगे आपकी परखने की और निर्णय करने की शक्ति ये बढ़ती जाएगी। और ये दोनों चीजें शो करती हैं कि आप कितने वैल्यूएबल हैं। आप ठीक निर्णय करते हैं, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, मेरे में भी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये निर्णय शक्ति हर जगह काम आएगी। आप खुद महसूस करेंगे कि अब मुझे सहन कर लेना चाहिए, अब मुझे चुप हो जाना चाहिए, अब मुझे ये करना चाहिए। आपकी निर्णय शक्ति बताती है आपको। नेक्स्ट इज पावर टू फेस। पावर टू फेस का मतलब है कि कुछ भी हो जाए आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं हुए। कुछ भी हो जाए में अनअवॉइडेबल सिचुएशंस, आप घर से निकले, तैयार होकर निकले, आपके ऑफिस पहुंचने में आधा घंटा लगता है। आजकल सड़कें बन रही है, मेट्रो स्टेशन बन रहा है, सड़कों पर रश ज्यादा है, एक रोड ब्लॉक है, एक रोड से ट्रैफिक जाएगा, आधा घंटा लगता है, आप एक घंटा पहले निकले, क्योंकि ऐसा होता है, आप समझदार हैं, थोड़ा आपने यूज किया समझ को और एक घंटा पहले घर से निकले ऑफिस जाने के लिए। लेकिन एक्सीडेंट, एक कार पूरी तरह से कुचली गई बड़े से ट्रॉले के नीचे, वो ट्रॉला ही पलट गया, कोई भयंकर एक्सीडेंट, उसमें चार पैसेंजर थे, चारों ही पूरी तरह खत्म। सुबह सुबह ऐसा सीन देखने को मिला, ट्रैफिक जाम, पुलिस आई हुई है, क्रेन आई हुई है, निकाल रहे हैं कार को, उठा के ले जा रहे हैं, एम्बुलेंस आई हुई है, बहुत कुछ है सड़क पर, और आपको एक घंटे में पहुंचने का था, लेकिन एक डेढ़ घंटा तो वहीं खड़े रह गए। जब तक आप डिसाइड करते कि मैं कोई दूसरे रास्ते से जाऊं, तब तक तो एक किलोमीटर लंबी लाइन पीछे लग गई, क्योंकि सभी का ऑफिस जाने का टाइम है, लगभग वही रोड है, तो कितनी परेशानी, कर क्या सकते हैं आप। अच्छा, जो डांटने वाला बॉस है वो भी तो उसी लाइन में लगा हुआ है, फिर क्या हो गया। सोचना ही है, यहां काम आती है आपकी पावर टू फेस, कि कोई भी परिस्थिति है आप उसमें परेशान नहीं हो रहे हैं। मृत्यु है, एक्सीडेंट है, चैलेंजेस हैं, बाढ़ है, भूकंप है, दीज ऑल आर कैसी चीजें हैं, ये अनअवॉइडेबल सिचुएशन, इसमें अचानक कब क्या हो जाए, ये वो चैलेंजेस हैं जिसको फेस ही करना है, या सहन करना, एडजस्ट करना, निर्णय करना, ये शक्ति काम नहीं आ रही है। आप स्टेबल रहें, आप परेशान ना हो, इस वक्त मेडिटेशन सीखा हुआ काम आएगा, आप म्यूजिक बजाएंगे, योग करने लग जाएंगे, आप कोई अच्छा सा भजन या गीत बजाएंगे और मेडिटेशन करेंगे, कर ही कुछ नहीं सकते। आप चाहते मेरी कार उड़ के सबसे आगे चली जाए, जाएगी नहीं, जा सकती। जब कुछ कर ही नहीं सकते, दैट इज अनअवॉइडेबल, तो शांत तो रह सकते हैं। आपके हाथ में क्या है, शांत रहना। आपके कंट्रोल में क्या है, स्टेबल रहना, मुस्कुराते रहना, पीसफुल रहना इन ऑल सिचुएशन, कंडीशन योर माइंड एंड रिमेन कूल इन ऑल कंडीशन। ये होता है एसी पर्सनैलिटी। एसी पर्सनैलिटी, कंडीशन योर माइंड एंड रिमेन कूल इन ऑल कंडीशन, तो ऐसा आप रह सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में है। तो अपने आप को याद करा दें कि फेस करना मींस कुछ भी हो जाए, घबराहट हो गई, बीपी हाई हो गया, हार्ट पेल्पिटेशन बढ़ गई, या पेल्पिटेशन लो चली गई, हार्ट सिंक होने लग गया, इसमें तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब धरती हिलने लग जाए हम क्या कर सकते हैं? हम गेट से बाहर निकल के ग्राउंड में खड़े हो सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। अब ये करते हुए, गेट से निकलकर ग्राउंड में जाते हुए जोर जोर से चिल्लाएं भी रोएं भी, इसकी क्या जरूरत है? अपने आप को कहना ही तो है ना, ये समझाना ही तो है, नहीं तो मेडिटेशन सीखा हुआ कब काम आएगा? राइट? कर पाएंगे ना ऐसा? कौन सी पावर है ये? कौन सी पावर है? पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति, परिस्थितियां, चैलेंजेस, चुनौतियां, इनका सामना करने की पावर ये आपके पास है। नेक्स्ट इज पावर टू कॉपरेट। कॉपरेशन देना इजी होता है कि कॉपरेशन लेना इजी होता है? अच्छा दोबारा पूछती हूं, वो हाथ उठाएं जो कहते हैं कॉपरेशन देना इजी होता है। कॉपरेशन देना, सहयोग देना इजी होता है। एक मिनट उठा के रखिए, आधा मिनट। अच्छा वो हाथ उठाएं जो कहते हैं कॉपरेशन लेना इजी होता है, लेना इजी होता है। दोनों में तो नहीं उठा रहे हाथ कहीं आप? ठीक है, 5-6-10 लोग ही हैं जो कह रहे हैं कॉपरेशन लेना इजी होता है। अच्छा जिन्होंने लेने में हाथ उठाए वो बताइए लेंगे किससे? किससे लेंगे? जब कोई देगा तभी लेंगे ना। लेना तो बड़ा इजी है, वो दे रहा है तो हम उसको यूज कर रहे हैं, बट लेने के लिए कितना उसको कन्विंस करना, कितना पॉजिटिव रहना, उसको बता पाना कि मुझे कॉपरेशन किस लिए चाहिए, ये इट्स नॉट इजी जॉब। इसमें आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी चाहिए, आपकी लीडरशिप स्किल्स चाहिए। कॉपरेशन देना इजी है। आप संतों जैसे स्वभाव के हैं, आप बहुत अच्छी नेचर के हैं, आप जिसके पास जाते हैं, जिससे मिलते हैं, आप उसको कॉपरेट करते हैं, तो ये इजी है। अच्छा बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत आत्माएं मिलती हैं, तो एक छोटा सा काम वो छोटा लगने लग जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल शास्त्रों में है कि इंद्रदेव कुपित हुए, बहुत बारिश बरसाई, तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया? सारे इकट्ठे हो गए गोवर्धन पर्वत के नीचे, वो गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। वैसे तो इजी नहीं है उखाड़ के उठाना, बट वो एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। सबने छोटी छोटी उंगली का भी सहयोग दिया। अच्छा जो बेचारा वो लंगड़ा था उनका दोस्त, उसने अपनी लाठी भी लगा ली, है ना? तो इसलिए छोटी छोटी उंगली के सहयोग से इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठ गया। जब ये संस्था शुरू हुई थी, एक अकेले ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज उनका नाम था, 1936 में अकेले थे वो। उन्होंने कॉपरेशन लिया, और लिया किन से पता है? जैसे श्री कृष्ण जी ने उंगली उंगली का सहयोग लिया, छोटी छोटी उंगली का, उन्होंने कॉपरेशन लिया उन माताओं बहनों से जिनकी उस समय कोई वैल्यू ही नहीं थी। उस समय जब समझते थे औरत पांव की जूती होती है, काटने लगे चेंज कर दो दूसरी ले आओ। जब मुस्लिम तो करते ही थे, हिंदू सिंधी लोग भी बहुत सी शादियां करते, दो दो तीन तीन शादियां करते थे 1952 में। आप सब जानते हैं 52 या 58 हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ, तब ये कंपलसरी हुआ कि एक ही शादी की जाएगी, दूसरी शादी वॉइड मानी जाएगी, नॉट इनवैलिड, वॉइड, हुई ही नहीं वो मानी जाएगी। तो इसलिए तब तक कोई भी दो तीन शादियां कर सकता था, उसको इनवैलिड या वॉइड नहीं बोलते थे, जरूरी समझते थे भाई लड़का नहीं हुआ, 2-3-4-5-6 लड़कियां हो गई, शादी दूसरी कर लो, तीसरी कर लो। तो हिंदू लोग सिंधी लोग सब करते थे, दो तीन शादियां कर सकते थे इजीली, उनको कोई रोकने वाला नहीं था। तो हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ, उसके बाद से ये शुरू हो गया। अब इसके बाद देखिए, उन्होंने ऐसी माताओं बहनों को जो नहीं पढ़ी लिखी नहीं थी, दलित थी, शोषित थी, डरती थी, घर की चार दीवारी में बंद थी, उनसे कॉपरेशन लिया। कैसे लिया? उनको कन्विंस किया, समझा दिया, उनमें पावर भरी, उनकी एनर्जी को एक्यूमुलेट किया कि तुम ही विश्व परिवर्तन करने वाली शक्ति हो, तुम साधारण अबलाए नहीं हो, यू आर पावरफुल सोल्स, और सोल मेल फीमेल नहीं होती है। कितनी बार आपने मेल का रोल प्ले किया है, पुरुष का रोल प्ले किया, कितनी बार फीमेल बनी, तो इसीलिए आप बहुत पावरफुल आत्माएं हो। इस तरह से बहुत उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाया, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाया और उनसे कोऑपरेशन लिया। जो ये संस्था छोटा सा पौधा था और आज सारे ग्लोब पर फैल गई है। तो ये कोऑपरेशन लेने का बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कोऑपरेशन लेने के लिए बहुत पॉजिटिव सोचना जरूरी है, उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति होना जरूरी है। कोऑपरेशन लेने के लिए आप कन्विंस कर पाए, समझा पाए, ये जरूरी है ना। तो ये तब आप कर पाएंगे। कोऑपरेशन लेना इतना इजी काम नहीं है। अपने आप को चेक करें, अगर आप कोऑपरेशन देने में बहुत अच्छे हैं तो 50% ही मार्क्स आएंगे आपके। आप हमेशा कोऑपरेट करते हैं, टीम स्पिरिट बनाए रख सकते हैं, तो कोऑपरेशन कोई आपको देने से मना नहीं कर सकेगा। ये राजाओं की निशानी है। कोऑपरेशन देना संतों की निशानी, सहयोग लेना राजाओं की निशानी। लीडरशिप स्किल है ये। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि आप पॉजिटिव होकर समझा पाए, कन्विंस कर पाए और उनको उनकी वैल्यू बता पाए, तब होगा। नेक्स्ट इज पावर टू विदड्रॉ। आपने कछुआ देखा है? सभी ने। इतना शांत जीव होता है कि वो एक मिनट में 3 बार इनहेल एक्सहेल करता है। उसके फेफड़े इतने पावरफुल होते हैं तो वो इतनी ऑक्सीजन अपने अंदर एक्यूमुलेट करके रख सकता है कि एक बार, एक मिनट में 3 बार इनहेल एंड एक्सहेल करता है। इतनी लंबी गहरी सांस लेता है। अगर कछुए की तरह आप सांस लेने लग जाएंगे ना तो कछुए जितना जिएंगे। लेकिन उसकी विशेषता एक और है जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, किसी से पंगे नहीं लेने, टकराना नहीं, संघर्ष नहीं उसकी लाइफ में नहीं होता है। एक कुत्ता एक मिनट में 30 बार सांस लेता छोड़ता है और उससे उतनी ही उम्र कम होती है। वो 250-300 साल तक कछुआ जी लेता है और कुत्ता जो एक मिनट में 30 बार सांस लेता छोड़ता है 15-20 साल, बस मुश्किल से 15 साल ही जी पाता है। तो इसलिए लंबी गहरी सांस वो ले सकेगा ना जो यहाँ से शांत और स्टेबल होगा, वही ले सकेगा ना। जिसको गुस्सा बहुत आता है, टेंशन बहुत है, नुक्स निकालने की आदत है, हमेशा ये गर्म रहता है, तो एक कहावत है, बड़े लोग कहते हैं, सांस गिन के मिलते हैं, अनाज मिन के मिलता है। मिन के मिलता मीन्स माप के। अगर आपकी जिंदगी में अगर आपने 20 क्विंटल अनाज और सब्जियां खाना है, वो 20 क्विंटल आप 40 साल में खा के पूरा कर दीजिए या थोड़ा थोड़ा 80 साल तक खाते रहिए, ये आपके हाथ में है। ये बड़े लोगों की कहावत है, अनाज मिन के मिलता है, सा गिन के मिलते हैं, सांस गिन के मिलते हैं। तो जब सांस पूरे होंगे तब आप चले जाएंगे। तो इसीलिए अब आप सोचिए कि अगर आप शांति से, प्यार से श्वास लेंगे, लंबे गहरे सांस, शांत रहेंगे तो वो सांस लंबे टाइम तक चलेंगे। उसमें टाइम का नहीं है, टाइम नहीं है कि आप कितना टाइम जिएंगे, आप कितने सांसें जिएंगे ये ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन को बढ़ाया जा सकता है, हो सकता है ना इसे। अब आप गुस्से में सांस जल्दी जल्दी लेते हैं, हाथ कांपने लग जाते हैं, मुंह लाल हो जाता है और अंदर से सब काला हो जाता है, अंदर आग लगती है ना, धुआं निकलने लग जाता है आंखों से, मुंह से। तो इसीलिए क्रोध छोड़कर ही जाना है, हंसना मुस्कुराना, बातों को खत्म कर देना नेचुरल सीखना है। आप अगर एक मिनट में 13-14 बार इनहेल एक्सहेल करते हैं तो उसको 7 या 8 बार तक लेकर आ सकते हैं। आराम से जिए, आराम से सांस लें, वही काम आप उतने ही तेजी से बिना डिस्टर्ब हुए कर सकते हैं। आप सोचिए, कर्म की स्पीड तेज और यहाँ की स्पीड कम तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई काम जल्दी में करना भी पड़ता है, जल्दी चलो ट्रेन छूट जाएगी, आप पैरों से जल्दी चले, यहां से नहीं, यहां से नहीं, ज्यादा से ज्यादा तेज चल रहे हैं और सोच कर देखे क्या हो जाएगा, छूट जाएगी तो वो तो छूट तो वैसे भी सकती है, क्या हो जाएगा उसे अगली प्लानिंग करके देख लीजिए ना, शांति से वो छूटेगी नहीं। तो इसलिए ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। यहाँ हर काम में इतनी एक्यूरेसी और परफेक्शन क्यों दिखाई देती है, क्योंकि सोचने की गति शांत है ना। क्वालिटेटिव थॉट्स उनकी क्वांटिटी कम है, क्वालिटी अच्छी है तो स्पीड कम हो जाती है, और क्वालिटी ऊंची है तो क्वांटिटी डाउन चली जाएगी। क्वांटिटी कम और स्पीड स्लो, यानी क्वालिटी अच्छी और स्पीड स्लो, तो उसको कहते हैं शांति है। तो विड्रॉ करने का असली मतलब है कि जहां जहां हमारी शक्तियां वेस्ट हो रही है वहां से कछुए की तरह विड्रॉ कर ले। वहां आप टकराएं नहीं, संघर्ष ना पैदा करें जबरदस्ती, या पत्थर पड़ा है मेरे रास्ते में पड़ा है, मैं उसको हैमर से तोड़ने में लगी हुई हूं, अरे भाई उसके साइड से भी तो जा सकते हैं। उसको तोड़कर ही रास्ता बना के जाना जरूरी नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें अगेन अनअवॉइडेबल हैं, तो उससे हटा जा सकता है। तो विड्रॉ करने का मतलब चार चीजें, TTEM, ये जहां वेस्ट होती है वहां से विड्रॉ कर ले। फर्स्ट टी थॉट्स, थॉट जहां वेस्ट हो रहे हों, जहां व्यर्थ सोचा जा रहा है, जहां बहुत थॉट चल रहे हैं, खुराफात, ओवर थिंकिंग, तो वहां से विड्रॉ कर लें। इसके साथ बातें, इसके साथ रिलेशन, वो ऐसे करता होगा वैसे करता होगा, जहां थॉट्स वेस्ट होते हैं वहां विड्रॉ करें, जहां टाइम वेस्ट होता है वहां से विड्रॉ कर लें, जहां एनर्जी वेस्ट हो रही है वहां विड्रॉ कर लें, और जहां मनी वेस्ट होता है। इसको चौथे नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि घर परिवार वाले आप सभी, थोड़ा बहुत मनी वेस्ट करना भी पड़ता है बच्चों की जिद पर, है ना, क्योंकि बच्चे खुद की खुशी के लिए ही पैदा किए हैं। अब वो कह देते हैं नहीं 10,000 वाला मोबाइल नहीं, 60,000 वाला मोबाइल लेना है, तो आप कहते हैं इनके लिए ही तो कमा रहे हैं, इनके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा मैंने कहा था 95% मार्क्स लेगा तो तेरे को तेरी पसंद का मोबाइल दिलाएंगे, अब दिलाना ही पड़ेगा जब आपने शर्त लगाई थी। तो इसीलिए वो मनी को इसलिए चौथे नंबर पे रखा है। लेकिन फिर भी मनी इज आल्सो असेट, टाइम, थॉट्स, एनर्जी एंड मनी, दिस फोर आर योर असेट। असेट्स को वेस्ट नहीं किया जाता है, उनको इकोनॉमिकल तरीके से यूज किया जाता है। अच्छे थॉट्स इकोनॉमी से यूज करें, टाइम को इकोनॉमी से यूज करें, वेस्ट नहीं करना है। तो ये सारी चीजें हमारी शक्तियों को बढ़ाती हैं। विड्रॉ कर लें, है ना, कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट होता है आपको पता लगता है। बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे असली नकली गहने रखे हुए हैं घर में, फिर भी पता है वहां सेल लगी हुई है, चलना कोई मतलब नहीं है, लेना भी नहीं है, कल बच्चे का एग्जाम भी है, उसको पढ़ाना भी है, अच्छा चल देख लेती हूँ मैं भी जाने का। फिर हस्बैंड पूछेगा वहां जाके 2 घंटे वेस्ट करके आए, तो फिर दिमाग खराब, 2 घंटे खराब कर दिए मैंने, टिंकू को पढ़ाना भी था, ये भी था, वो भी था। अरे भाई मना कर देते, मना ही तो नहीं किया जा रहा। अच्छा ये दिस इज नॉट कोऑपरेशन, आप इसको कोऑपरेशन नहीं समझे। कोऑपरेशन होता है जहां व्यक्ति को जरूरत है वहां आप उसके मददगार बन रहे हैं। सेल में घूमने जाना, मॉल्स में घूमने जाना, उसके साथ मूवी देखने जाना, अपना टाइम वेस्ट करना, थॉट्स वेस्ट करना, ये जरूरत नहीं है। ये डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो, एक बड़ी अच्छी बुक है स्वेट मॉडर्न की। मुझे भी ये आदत नहीं थी, मैं भी अपने फ्रेंड्स को जो भी थी उनको मना नहीं कर पाती थी किसी काम के लिए, अब टाइम वेस्ट करके फिर बाद में दुखी होती रहती थी। तो उस वक्त फादर ने किताब पढ़ने को दी थी, ये बहुत छोटी उम्र में, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। तो विड्रॉ करने की पावर बढ़ाएं अपनी, जहां पंगे नहीं लेने, जहां टकराना नहीं, जहां वेस्ट नहीं करना, वहां से विड्रॉ कर लें। दोनों में अंतर है, पैकअप में और विड्रॉ करने में। पैकअप करते हैं हम रोल प्ले करने के बाद, प्ले कर दिया रोल, वहां से अपने आप को हटा लें, अब वो रोल खत्म हो गया, अब कल शुरू होगा। लेकिन विड्रॉ वो रोल प्ले करने से पहले, वो ऐसा रोल है जिससे क्लेश बढ़ेगा, घर में अशांति होगी, क्लेश होगा, परेशानी होगी, मुझे ऐसा रोल प्ले नहीं करना, वहां से विड्रॉ कर ले। तो ये चीज हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये शक्तियां आप यहीं से भरकर जाएंगे, यानी आज सुन लिया, नोट कर लिया, वहां जाके प्रैक्टिस करेंगे, आज और अभी से आपको चांसेस मिलेंगे इसको यूज करने का। जिन कमरे में आप दो लोग, चार लोग, पांच लोग इकट्ठे रहते हैं, है ना, उनके साथ रह रहे हैं, जिनके साथ आप घर में इकट्ठे नहीं रहे थे, बहने बहनों के साथ प्रैक्टिस करें शांत रहने की, सहन करने की। बेशक वो सारी रात खर्राटे मारे तो भी आप, चार दिन की तो बात है, सहन कर लें। शिकायतें करना, नुक्स निकालना, इट्स वेरी इजी, है ना, परेशान होना बहुत इजी है, परेशान ना होना इसमें मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए शांति की शक्ति कहा जाता है। तो ये तब होगा जब हम जोड़ने पर अटेंशन देंगे, छोड़ने पर नहीं। आपने पहले जोड़ना है, तो अब हम फिर से एक प्रैक्टिस करेंगे जोड़ने की, अपने आप को इन्हीं सब शक्तियों से, अगेन मैं जल्दी जल्दी बोलती जाती हूँ नाम, इन सब शक्तियों से खुद को, अपने आप को भरपूर समझेंगे। पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, टॉलरेंस, पावर टू अकोमोडेट या एडजस्ट, तालमेल बिठाने की शक्ति, परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट या पावर टू डिसर्न, पावर टू जज निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, कोई भी सिचुएशंस को, चैलेंजेस को, चुनौतियों को सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस, पावर टू कोऑपरेट, सहयोग देने और लेने की शक्ति, पावर टू विथड्रॉ, बहुत अपने आप को जहां विस्तार में ना ले जाएं, संकीर्ण कर लें, हटा लें, जैसे वो जहां भी दुश्मन है, जहां भी ऐसी स्थिति है, वहां से अपने आप को हटा लेता है कछुआ। तो ये बहुत जरूरी है, परिवार के क्लेश प्रॉब्लम्स ना बढ़ने दें, कितना लिटिगेशन कम हो जाएगा अगर ये सारी शक्तियां हम सब में होंगी। तो वो समय को ही सतयुग कहा जाता है, जिस समय आत्मा में ये सभी शक्तियां जागृत थी, और वो अभी से मेहनत करेंगे तो जागृत हो जाएंगे। तो इसके लिए आप सभी इन सभी शक्तियों को प्रतिदिन यूज करके इतने खिले हुए रहें कि आप एग्जाम्पल बन जाएं दूसरों के सामने, वो सोच सकें कि वाह, इन जैसा बनना चाहिए, आप उनके आगे एग्जाम्पल बने। तो यहां से ये सब चीजें सीख कर ऑलरेडी आपके अंदर है, उसको थोड़ा और बढ़ा लें, तो आप फील करेंगे कि इन सब में 100% बनने का लक्ष्य रखेंगे तो 90% अवश्य आएंगे। तो ऐसे सुंदर जीवन के लिए, मुस्कुराते हुए जीवन के लिए, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ के लिए आप सबको मंगल कामनाएं। ओम शांति। थैंक यू। अभी इसे बहुत प्रैक्टिकली यूज करेंगे, फिर से सीधे होकर बैठेंगे सभी, या चौंकड़ी लगाएं, या दोनों पांव जमीन पर लगाएं, ऐसे क्रॉस लेग या टेढ़ी मेढ़ी टांगे नहीं करेंगे। एकदम शांत होकर अपने मन की स्थिति को अपने नियंत्रण में रखकर ये समझ लें कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, मैं आत्मा भी, सर्व शक्तियों से भरपूर हूं। मन में एक सुंदर विजन बनाएं, जैसे देवी को 8 भुजाओं सहित दिखाते हैं, 8 भुजाधारी, ऐसे ही ये पावर्स मेरी आठ भुजाएं हैं। अब अपने आप को वर्क प्लेस पर देखें। आप इजीली सहन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। हर परिस्थिति चुनौती में शांत रह सकते हैं। आप एकदम स्टेबल हैं, स्थिर बुद्धि, बहुत अच्छा परख सकते हैं, अच्छे निर्णय कर सकते हैं। अपने आप को कह दें, मैं शांत आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आप में नेचुरल महानता और डिविनिटी है। अपने दिव्यता को पहचाने। आपके मस्तक में तेज चमक रहा है। फील करें मस्तक से निकलती हुई लाइट आपके चारों तरफ एक सुंदर आभा मंडल का निर्माण कर रही है। अपने आप को देखें लाइट के घेरे में बैठा। मैं शांत तपस्वी हूँ। नथिंग कैन डिस्टर्ब मी, नो वन कैन डिस्टर्ब मी, आई एम पीसफुल सोल। प्यारे पिता, आप शांति के सागर हैं। मैं शांत आत्मा हूँ। आप सर्वशक्तिवान हैं। मैं अपने प्रतिदिन के जीवन में सर्वशक्तियाँ प्राप्त कर उनको यूज करती हूँ, उनका प्रयोग करते हूँ। आई एम स्टेबल पर्सनैलिटी, आई एम पीसफुल सोल। Oh.
शांति। आदरणीय कविता दीदी जी का हम सभी तहे दिल से शुक्रिया करेंगे, धन्यवाद देंगे। कितनी सुंदर बात दीदी ने हम सबके बीच में रखी कि कहा कि ब्रह्मा कुमार इसमें तोड़ना नहीं सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? जोड़ना। तो आपने इतना सुंदर तरीके से परमात्मा से संबंध जोड़ना सिखाया, तो दीदी जी का बहुत बहुत थैंक्स। और साथ में आप सभी ने 8 शक्तियों की प्राप्ति के बारे में भी सुना, तो सबको आज समझ में आ गया कि राजयोग मेडिटेशन से हमारे जीवन में ये 8 शक्तियों की प्राप्ति होने लगती है। तो क्या आप लोग रिवाइज कर सकते कौन कौन सी शक्ति? सबसे पहले क्या सिखाया दीदी ने? पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। और दूसरी शक्ति कौन सी थी? दूसरी सहन करने की शक्ति। और तीसरी शक्ति समाने की शक्ति, वेरी गुड। और फोर्थ परखने की शक्ति, वेरी गुड। और फिफ्थ निर्णय करने की शक्ति, हाँ जी। इसके बाद सिक्स्थ सामना करने की शक्ति। और सेवेंथ पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति। और लास्ट शक्ति है पावर टू विथड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो आप सबको समझ में आ गया इतनी मेडिटेशन से 8 शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो दीदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।